नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ उत्तरा गणेशन। नमस्कार उत्तरा जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
धन्यवाद प्रियंका।
और चर्चा करें उससे पहले अब तक की लेटेस्ट हेडलाइंस जान लेते हैं। कबड्डी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने अपने पहले मैच में वेल्स को 89-18 से हराया। पुरुष टीम का मैच आज रात स्कॉटलैंड से। लॉस एंजलिस में 2028 में होने वाले ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी को शामिल करने का रास्ता साफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल से मुलाकात की। और स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शुरू, लक्ष्य सेन ने टूर्नामेंट से नाम वापस लिया। इंग्लैंड में कबड्डी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम ने अपने पहले मैच में वेल्स को 89-18 से हराया। उधर पुरुष टीम आज रात स्कॉटलैंड के साथ मुकाबला करेगी। कल भारतीय पुरुष टीम ने इटली को 64-22 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की थी। और अब कल होने वाले मैच के बारे में भी आपको बता देते हैं। भारतीय पुरुष टीम का सामना हांगकांग से और महिला टीम का सामना पोलैंड से होगा। भारत की पुरुष टीम और महिला दोनों टीमें इस प्रतियोगिता की पूर्व विजेता रही हैं उत्तरा। और देखा जाए तो कबड्डी में हम बहुत ही स्ट्रांग कंटेंडर्स हैं, चाहे हम एशियन गेम्स की बात करें 2023 में, उसमें भी हमने खिताब जीता था।
बिल्कुल, लेकिन अगर आपको याद हो तो उसके पहले वाले में ईरान ने हमें हराया था
जी।
तो ऐसा नहीं है कि बहुत आसान होगा, और ये वर्ल्ड कप है, और जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, सिर्फ ईरान नहीं, अगर आप देखें तो कोरिया में भी कबड्डी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और इंग्लैंड में भी काफ़ी खिलाड़ी हैं। पहले ये होता था कि भारतीय या पाकिस्तान मूल के खिलाड़ी होते थे, पर अब वहाँ के लोकल खिलाड़ी भी इसमें काफ़ी हिस्सा ले रहे हैं। उनकी टीमों में जिस तरह के खिलाड़ी हैं, यूएस में है और लैटिन अमेरिका की कुछ टीमें हैं जहां पे तेजी से इसका इसका प्रभाव बढ़ रहा है। लोग बहुत ज्यादा कबड्डी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये कहना बिल्कुल फेवरेट जरूर है, क्योंकि इतने सालों से हमारा हमारा दबदबा रहा है मेन और विमेन दोनों में, पर पिछले कुछ सालों का अगर देखें तो आसान नहीं होगा, चीजें और मुश्किल ही होती जाएंगी। और मुझे लगता है कि इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसा ना हो कि कबड्डी जैसे खेल में भी हमें स्ट्रगल करना पड़े, क्योंकि हालांकि यहाँ पे प्रो कबड्डी लीग होती है जिससे काफी नए खिलाड़ी आए हैं और बहुत से यंगस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने इम्प्रेस किया है उसमें, पर इंटरनेशनल लेवल पे जब तक आपके पास कोई चुनौती ना हो तब तक नहीं पता चलता कि आप कितना अच्छा खेल रहे हैं। पहले सिर्फ ईरान हुआ करता था, उससे पहले पाकिस्तान से हुआ करता था, फिर ईरान बहुत तेजी से आया है, हमें हरा भी चुका है एशियन गेम्स में। अब जैसा मैंने बाकी कंट्रीज का नाम लिया, तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि जैसा कहते हैं कि अगर आप इफ यू डोंट वर्क हार्ड देन व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, तो उस चीज पे ध्यान रखने की जरूरत है कि हम पहले कितने मजबूत थे, उस चीज को भूल के आगे बढ़ने की अभी जरूरत है।
और मुझे लग रहा है अगर, क्योंकि अगर आप वो देखें, अंतर देखें, तो जैसे कल 64-22 से हराया तो अंतर अच्छा था, और आज महिला टीम ने 89-18 से हराया तो भी अंतर अच्छा है काफी।
बिल्कुल, लेकिन हमें ओपोनेंट भी देखना पड़ेगा, चाहे वो वेल्स है, स्कॉटलैंड है, जो हल्की टीमें हैं उनको आप मार सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, जब सेमीफाइनल फाइनल की बात आती है तो आपके सामने आसान कोई टीम नहीं होगी, और अभी भी भारत और ईरान अगर हम कहें तो इस वक्त वर्ल्ड की बहुत मजबूत टीमें हैं, और इन दोनों और बाकी टीमों में फासला बहुत ज्यादा है, पर उस फासले को कम होते देर नहीं लगेगी। हम बाकी बहुत से खेलों में देख चुके हैं कि जब आपको पता भी नहीं चलता और 2-3 साल के अंदर टीमें इतनी तेजी से ऊपर आती हैं, तो उस चीज पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम पास्ट में कैसे थे उस को अगर हम लेके चलेंगे, या 89-18 के स्कोर लाइन को किसी टीम के साथ देखेंगे, तो मुझे लगता है कि वो सही चीज नहीं होगी। 89-18 आपने वेल्स को मारा, वो मैच खत्म हो चुका है, अगला मैच कैसा है, और पोलैंड हल्की टीम नहीं होगी
जी। तो जितना टफ कंपटीशन होगा मजा भी उतना ही आएगा, और उतनी आपको प्रेरणा मिलेगी।
बिल्कुल, और टीमों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अगर आप अकेले जीतते रहेंगे तो उससे क्या फायदा जीतने का।
तो भारतीय पुरुष टीम इटली, स्कॉटलैंड, वेल्स और हांगकांग के साथ ग्रुप बी में है, जबकि ग्रुप ए में इंग्लैंड, हंगरी, पोलैंड, जर्मनी और अमेरिका की टीमें हैं। महिलाओं की 6 टीमों को डी और ई समूहों में बांटा गया है। भारतीय महिला टीम ग्रुप डी में है, जिसमें उसका मुकाबला वेल्स और पोलैंड से है। ग्रुप ई में हांगकांग, हंगरी और इंग्लैंड की टीमें हैं। बॉक्सिंग के गलियारे से बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी को शामिल करने का रास्ता साफ हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने 144वें सत्र से पहले से मंजूरी दे दी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पिछले महीने विश्व मुक्केबाजी को अस्थायी मान्यता दे दी थी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ को दरकिनार करके नई नियामक इकाई को अधिकार सौंपे गए थे। ओलंपिक समिति के आज से 21 मार्च तक चलने वाले सत्र में लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में मुक्केबाजी को शामिल करने के कार्यकारी बोर्ड के फैसले को मंजूरी भी मिलेगी। देखा जाए तो ओलंपिक समिति की देखरेख में टोक्यो ओलंपिक 2020 और पेरिस ओलंपिक 2024 के मुक्केबाजी की स्पर्धाएं हुई थी, और लंबे समय से जो संचालन संबंधी मसलों और मुकाबलों की निष्पक्षता पर सवाल उठाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की मान्यता रद्द कर दी गई थी। तो देखा जाए सभी बॉक्सर्स के लिए, भारतीय के लिए बहुत ही गुड न्यूज है ये।
बिल्कुल, और एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे भी जो वर्ल्ड बॉक्सिंग एक अल्टरनेट बॉडी बनी है, उसका उसके लिए सहमति बढ़ती जा रही है, उसमें और कंट्रीज जुड़ती जा रही हैं, रिकॉग्निशन की तरफ वो आगे बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें आपको उम्मीद देती हैं कि माफ कीजिए कि बॉक्सिंग में सुधार की उम्मीद है, और सुधार की बहुत सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि बॉक्सिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें हमेशा से स्कोरिंग सिस्टम को लेके दिक्कतें रही हैं, लोग उनको चैलेंज करते रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी की हमेशा कमी रही है। और उसके बाद लगातार कई ओलंपिक्स में जिस तरह से हुआ था, उसके बाद जो उनके इन्वेस्टिगेशंस हुई थी उसमें यह पता भी चला था कि उसमें बायस्ड होते हैं, उसमें स्कोरिंग सिस्टम के साथ छेड़छाड़ होती है, जो स्कोरिंग ऑफिशियल होते हैं उनकी उनके करप्शन की काफी खबरें आई थी। ये सारी इन सब चीजों के बाद ही उनको सस्पेंड किया गया था, पर अब बॉक्सिंग को इंक्लूड करने का जो प्रस्ताव है, जो मुझे लगता है कि मंजूर हो जाएगा, वो बॉक्सर्स के लिए बहुत अच्छी चीज है, खास करके भारतीय बॉक्सर्स के लिए।
पर बॉक्सर्स ऐसे देखा जाए पेरिस ओलंपिक में देखे तो हमें हमारे बॉक्सर्स को खाली हाथ लौटना पड़ा था वहां से, तो
बिल्कुल, लेकिन उसमें,
उस स्तर पर भी मेहनत करनी,
लेकिन उससे पहले जो जिस तरह से कंफ्यूजन चल रहा था उसमें आपको ये नहीं पता था कि बॉक्सिंग पहले होगा कि नहीं होगा, लास्ट मिनट पे ये हुआ कि बॉक्सिंग रहेगा पेरिस में, उसके बाद उसकी तैयारियों के लिए लगातार वो इंटरनेशनल आईओसी के अंडर चीजें हो रही थी, जो क्वालिफायर्स हो रहे थे वो भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी उनमें नहीं थी, तो वो सारी चीजें भी कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के मानसिक उस पर असर करती हैं। आपको पता नहीं है कि आपको किस चीज के लिए ट्रेन करना है, आपका खेल रहेगा नहीं रहेगा, आप सारा साल मेहनत करें और उसके बाद आप पार्टिसिपेट ना कर पाए, आपको कुछ पता नहीं है। अब जिस तरफ चीजें जा रही हैं ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड, मुझे लगता है खिलाड़ियों के लिए ये एक अच्छी चीज है, क्योंकि आपको एक क्लैरिटी मिलती है। अब जब आप, अगर ये क्लियर हो जाएगा तो आपके पास अगले 2 साल हैं, 2.5 साल रहेंगे ये अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। और जैसा मैंने कहा वर्ल्ड बॉक्सिंग की तरफ चीजें जा रही हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिवली भी ट्रांसपेरेंसी आ रही है, क्लीनिंग ऑफ द हाउस जिसे कहते हैं वो हो रहा है, और भारत उसमें बहुत बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, क्योंकि इंडियन बॉक्सिंग जो है वो एक तरह से लीडरशिप रोल में है इस वक्त वर्ल्ड बॉक्सिंग में, तो उससे हमारे खिलाड़ियों को जरूर बहुत फायदा होगा, क्योंकि अगर आपका कोई प्रतिनिधि आपके एडमिनिस्ट्रेशन से, आपका कोई प्रेसिडेंट वहां पे है, तो आपको चीजें पता रहती हैं, आपको वो कंफ्यूजन नहीं रहता, अनसर्टेनिटी नहीं रहती। और हमारे बॉक्सर्स के लिए ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक टाइम था जब बॉक्सिंग हमारे लिए शायद रेसलिंग के बाद सबसे बड़ा मेडल प्रोस्पेक्ट था, लेकिन पिछले कुछ सालों में वो चीजें कम हुई हैं। अब मुझे लगता है कि जिस तरह से चीजें सुधर रही हैं, तो एलए ओलंपिक्स में हमारे बॉक्सिंग में मेडल आने के चांसेस बहुत ज्यादा अच्छे हैं।
स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शुरू हो गया है, आज क्वालिफायर्स मैच खेले जा रहे हैं, और इसमें बड़ी खबर यह है कि लक्ष्य सेन ने इस टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया। इस पर एक रिपोर्ट है, आइए सुनते हैं।
लक्ष्य सेन के नाम वापस लेने से क्वालिफायर मैच खेलने वाले के श्रीकांत को पुरुष सिंगल्स के मुख्य ड्रॉ में सीधे प्रवेश मिल गया है। मुख्य ड्रॉ के पहले मुकाबले में सेन का सामना भारत के ही एचएस प्रणॉय से होना था, पर अब प्रणॉय और के श्रीकांत आमने सामने होंगे। उधर महिला सिंगल्स में कई खिलाड़ियों के नाम वापस लेने से मुख्य ड्रॉ के पहले दौर में अब पीवी सिंधु और मालविका बंसोड़ भी आमने सामने नहीं होंगी। सिंधु का सामना अब डेनमार्क की जूली जैकोबसेन से होगा और मालविका का सामना कनाडा की शैली से होगा। इसके अलावा कई अन्य बड़े खिलाड़ियों ने भी नाम वापस लिया है, इनमें ली जी जिया, शी यू कुई के नाम शामिल हैं। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
उत्तरा ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे लक्ष्य सेन, और इस मोमेंट पे उनका नाम वापस लेना सेट बैक है इंडिया के लिए।
बिल्कुल, लेकिन हमें यह भी समझना पड़ेगा कि बहुत ही टाइट कैलेंडर है बहुत ज़्यादा बैडमिंटन का, और लगातार जो टॉप के प्लेयर्स हैं वो इस चीज़ पे बोलते रहे हैं, आवाज़ उठाते रहे हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको प्लेयर्स के मानसिक और फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और कुछ टूर्नामेंट्स ऐसे हैं जिसमें आप का खेलना बहुत ज़रूरी होता है, और चाहे वो रैंकिंग के हिसाब से हो या प्रेस्टीज के हिसाब से हो, पर लगातार हर हफ्ते आप नहीं खेल सकते हैं। सात्विक और चिराग भी, उन्होंने विड्रॉ किया था इंजरी की वजह से लगातार। यहाँ पे भी एक्सेलसन नहीं खेल रहे हैं क्योंकि वो पिछले मैच में, पिछले ऑल इंग्लैंड में वो हार गए थे और उनका बैक इंजरी फिर से फ्लेयर अप हुआ था। मिया ब्लेकफील्ड नहीं खेल रही हैं, रचनॉक इंतनॉन ने विमेंस में पुल आउट कर लिया है, तो बहुत से ऐसे बड़े नाम हैं जिन्होंने पुल आउट किया है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है किसी खिलाड़ी के लिए कि इतने हाई लेवल पे लगातार आप हफ्ता दर हफ्ता हर रोज मैच खेलें। बैडमिंटन एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आपको रेस्ट बिल्कुल नहीं मिलता है। अगर आप आज मैच जीतते हैं, कल आप फिर खेलेंगे, कल परसों फिर खेलेंगे, पूरे हफ्ते आप मैच खेलते हैं। तो लक्ष्य सेन का विड्रॉ करना दुख जरूर है, दुखद जरूर है, पर सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि वो भी लगातार बहुत समय से खेल रहे हैं, उनको बिल्कुल ब्रेक नहीं मिला है। तो फिटनेस अपनी मेंटेन रखना मुझे लगता है कि किसी भी खेल में पॉसिबल नहीं है, और बैडमिंटन में जिस इंटेंसिटी पे आजकल टॉप लेवल के मैचेस होते हैं उसमें आपको रिकवरी करना बिल्कुल आसान नहीं होता है। उम्मीद यही रख सकते हैं कि जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, जैसे कि सिंधु हैं या मालविका हैं या लड़कों में प्रणॉय हैं और श्रीकांत हैं, तो वो लोग जरूर आगे तक जाएंगे इस टूर्नामेंट में।
बिल्कुल, क्योंकि सिंधु अगर के श्रीकांत प्रणय को देखिए पहले भी जीत चुके हैं ये खिताब,
बिल्कुल,
तो बहुत ही हमारे पास चांसेस हैं कि हम फिर से एक बार खिताब जीते।
बिल्कुल, और ये आगे तक जाएं, और जिन्होंने विड्रॉ किया है आने वाले टूर्नामेंट्स में हम यही उम्मीद करते हैं कि पूरी तरह से रिकवर हो के वो खेलने के लिए उतरेंगे, तो वो शायद ज्यादा बेहतर होगा उनके लिए भी और भारतीय बैडमिंटन के लिए भी।
इंडियन वेस्ट टेनिस टूर्नामेंट में रूस की मीरा एंड्रीवा ने महिला सिंगल्स और ब्रिटेन के जैक ड्रैपर ने पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। दोनों ने पहली बार महिला और पुरुष सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है। एक रिपोर्ट सुनते हैं। एंड्रीवा ने अपना स्वप्निल प्रदर्शन जारी रखते हुए विश्व की नंबर एक खिलाड़ी बेलारूस की आयना सबालेंका को 2-6, 6-4, 6-3 से हराकर महिला सिंगल्स ट्रॉफी पर कब्जा किया। इस हार से सबालेंका का सपना फिर टूट गया। 17 वर्षीय खिलाड़ी एंड्रीवा ने पहला सेट गंवाने के बाद शानदार वापसी की। वह इतिहास दोहराते हुए 1999 में सेरेना विलियम्स के बाद टूर्नामेंट की सबसे कम उम्र की चैंपियन बन गई। उधर पुरुष सिंगल्स में ब्रिटेन के युवा ड्रैपर ने 12वीं वरीयता प्राप्त डेनमार्क के होल्डर रूने को 6-2, 6-2 से मात दी। इससे पहले उन्होंने सेमीफाइनल में दो बार के चैंपियन अलकराज को हराया था। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन। इस हार से सबालेंका का एक बार फिर सपना टूट गया ये टूर्नामेंट जीतने का।
टेनिस जिस लेवल पे हो रहा है उसमें स्पेशली विमेंस टेनिस में लगातार नए आपको मिल रहे हैं। हालांकि सैबलेंका और श्वाटेक एक एक्सेप्शन है कि वो इतने सालों से हैं और अभी भी टूर्नामेंट्स में टाइटल खिताब के लिए वो खेल रहे हैं, पर जिस तरह से नए खिलाड़ी आते जा रहे हैं आसान नहीं होगा इनके लिए अपने आप को कंटिन्यू करते रहना।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल से मुलाकात की और उनके प्रदर्शन की सराहना की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें भारतीय दल पर गर्व है जिसने विशेष ओलंपिक में 33 पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। और इसके अलावा 57वीं सीनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 31 मार्च से ओडिशा में पुरी के जिला खेल परिसर में आयोजित की जाएगी। समय कह रहा है आपसे अनुमति ली जाए। उत्तरा जी, आप स्टूडियो में आई और विस्तार से खेल खबरों पर चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद।
धन्यवाद प्रियंका।
श्रोताओं, प्रियंका अरोड़ा स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।